लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है वेनिस की प्रेरितिक यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस का प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस ने वेनिस में अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान 28 अप्रैल को संत मार्कुस महागिरजा घर के प्रांगण में करीब 10,500 विश्वासों के साथ ख्रिस्त त्याग अर्पित किया। अपने प्रवचन में संत पापा ने कहा, यीशु दाख लता है और हम डालियां। ईश्वर एक करुणावान और अच्छे पिता की भांति एक धैर्यपूर्ण किसान है जो कोमलता के साथ हमारी देखरेख करते हैं, जिससे कि हम अधिक फल उत्पन्न कर सकें। यही कारण है कि यीशु हमें अपने साथ मूल्यवान संबंध रूपी उपहार की हिफाजत करने का आह्वान करते हैं, जिस पर हमारा जीवन और हमारी उर्वरकता निर्भर करती है। वे निरंतर इस बात को दोहराते हैं कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, क्योंकि केवल वे ही फलदायक हो सकते हैं जो यीशु से संयुक्त रहते। संत पापा ने कहा, हम इस विषय पर थोड़ा रुककर चिंतन करें। यीशु पृथ्वी पर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अपने अंतिम प्यारी के भोज में वे अपने शिष्यों को, जो प्रेरित बनेंगे, यूखरिस्त के साथ बहुत सारी बातें बतलाते हैं। उनमें से एक मुख्य बात है, मुझ में बने रहो। कहने का अर्थ, मेरे संग संबंध बनाए रखो, जैसे कि डालियां दाखलता से जुड़ी रहती हैं। इस उपमा का उपयोग करते हुए यीशु धर्मग्रंथ के उन प्रसिद्ध बातों की ओर पुनः इंगित करते हैं, जैसे स्तोत्र हमें कहता है, इसराइल वह दाखबारी है जिसे ईश्वर ने रोपा है और जिसकी वे चिंता करते हैं। जब चुनी हुई प्रजा प्रेम का फल उत्पन्न करने में असफल रही, जिसकी आशा ईश्वर करते थे, तब नबी इसायस ने एक दाखबारी के स्वामी के दृष्टांत के माध्यम से कहा। उसने एक दाखबारी का निर्माण किया, उसके पत्रों को हटाया और अच्छे दाख लगाए, इसी आशा में कि वे अच्छी अंगूरी प्रदान करेंगे, लेकिन उसे खट्टी अंगूरी ही मिले। नबी अंत में कहते हैं, विश्व मंडल के प्रभु की यह दाखबारी इसराइल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया, उससे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा है। यीशु स्वयं नबी इसायास के ग्रंथ से उद्धृत करते हुए ईश्वर के धैर्य और अपने लोगों के कठोर हृदय का जिक्र हत्यारे दाखबारी के दृष्टांत में करते हैं। इस भांति अंगूरी की उपमा ईश्वर के प्रेम में चिंता के बारे जिक्र करती है। वहीं यह हमें इस बात की चेतावनी देती है कि यदि हम ईश्वर के संग अपने संबंध को तोड़ देते हैं, तो हम जीवन में अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और सूखी डालियों के समान हो जाएंगे, जिन्हें फेंक दिया जाता है। संत पापा ने इस प्रतीक के संदर्भ में वेनिस के अतीत की याद की, जो अपनी दाखलता और अंगूरी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, जहां मठवासी अंगूरी उत्पादन करते थे। संत पापा ने कहा, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर हम दाखलता और डालियों के दृष्टांत को आसानी से समझ सकते हैं। ईश्वर में विश्वास और उनके साथ हमारा संबंध हमारी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता, लेकिन ठीक इसके विपरीत यह हमें ईश्वर के प्रेम रस को ग्रहण करने के लिए खोलता है, जो हमारी खुशी को दोगुनी कर देते हैं। वे हमारी चिंता करते और एक अनुभवी दागबारी की देखरेख करने वाले की भांति हमारी भूमि को कठोरता के बावजूद कोमल पौधों को हम में बढ़ने में मदद करते हैं। पोप ने कहा कि हम यीशु के हृदय से निकलने वाले उपमा पर चिंतन करते हुए इस शहर के बारे में विचार कर सकते हैं जो पानी पर स्थापित है, जो दुनिया में अपनी अद्वितीय मनोरम दृश्य के लिए विश्व विख्यात है। वेनिस का शहर पानी से एक है जिसके ऊपर यह बसा हुआ है, लेकिन इसकी देखरेख और इसकी स्वाभाविक प्रकृति के रखरखाव के बिना यह नष्ट और समाप्त हो जाएगा। उसी भांति हम सबों का जीवन भी सदैव ईश्वर के प्रेम रूपी झरनों से भरा है। बपतिस्मा में हम सभी का पुनर्जन्म हुआ है, हमने जल और पौत्रात्मा से नए जीवन को पाया है और हम ख्रिस्त रूपी दाखलता में कलम किए गए पौधे की भांति हैं। ईश्वर का प्रेम रस हम में प्रवाहित होता है, इसके बिना हम सूखी टहनियों की भांति हो जाएंगे जो फल उत्पन्न नहीं कर सकता। धन्य संत पापा जॉन पॉल प्रथम, जो इस शहर में आचार्य की भांति थे, उन्होंने एक बार कहा था, यीशु लोगों के लिए अनंत जीवन देने आए, उनमें जीवन है और यह उनके द्वारा शिष्यों को दिया जाता है, वैसे ही जैसे रस धर से प्रवाहित होते हुए शाखाओं में जाती है। यह वह शुद्ध जल है जिसे उन्होंने दिया है, जो अपने में उमड़ता रहता है। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम यीशु में बने रहें, उनमें विश्वास करें, लेकिन रहना क्रिया को हम जड़त्वा के रूप में परिभाषित ना करें, मानो यह हमारा खड़ा रहना हो, उदासीनता में खड़ा रहना। वास्तव में यह हमें आगे बढ़ने का निमंत्रण है, क्योंकि ईश्वर के संग रहने का अर्थ उनकी मित्रता में बढ़ना है, उनसे बातें करना, उनके शब्दों को आत्मसात करना या उनके ईश्वरीय राज्य के मार्ग में आगे बढ़ना है। यही कारण है कि यह हमें एक यात्रा में निकलने की मांग करता है, जहां हम उनका अनुसरण करते और उनके सुसमाचार द्वारा चुनौती लेते हैं और उनके प्रेम का साक्ष्य देते हैं। अतः यीशु कहते हैं कि जो उनके साथ रहता है वह फलदायक होता है। यह कोई ऐसा वैसा फल नहीं होता, डालियों के फलों में रस का प्रवाह होता है जो अंगूरों में पहुँचता है और अंगूरों से अंगूरी का निर्माण होता है, जो हमारे लिए एक सर्वोत्कृष्ट मुक्ति विधान की निशानी है। यीशु जो पिता के द्वारा मसीह के रूप में भेजे गए, ईश्वर के प्रेम रूपी अंगूरी को मानवता के हृदयों में लाते और उसे खुशी एवं आशा से भर देते हैं। संत पापा ने आगे कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अपने जीवन के द्वारा अपने संबंधों में, उन स्थानों में जहां हम रोज दिन जाते हैं, हमारे समाज में ऐसा ही फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। आज वेनिस के इस शहर को देखते हुए हम इसकी सुंदरता से मोहित, इसकी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि बहुत सी बातें हैं जो हमें चिंतित करती हैं, जलवायु परिवर्तन जो इस शहर को जलमग्न कर रही है, निर्माण की कमजोरियां, सांस्कृतिक विरासत लोगों के लिए बड़ी चिंता है। हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में असमर्थ हैं जो पूरी मानवता को निवास के लायक बनाए, जिसमें पर्यटन का सही संचालन हो और उससे भी अधिक ये सारी चीजें अस्त व्यस्त सामाजिक संबंधों, व्यक्तिवाद और अकेलेपन को जन्म दे रही हैं। उन्होंने कहा, हम ख्रिस्त जो दाखलता के संग जुड़े हुए हैं, ईश्वर की दागबारी के मजदूर हैं, जो मानवता की चिंता करते और जिन्होंने विश्व को एक वाटिका के रूप में तैयार किया है, वे हमें उसका विकास करने और उससे विकसित होने में मदद करने के लिए बुलाए जाते हैं। हम इसका प्रत्युत्तर कैसे दें? उन्होंने कहा, यीशु के साथ बने रहते हुए हम सुसमाचार के फल को जहां हम रहते हैं उत्पन्न कर सकते हैं। न्याय और शांति के फल, एकता और पारस्परिक चिंता, सतर्कता, पूर्ण ढंग से हमारे पर्यावरण और मानव विकास की हिफाजत करके हम अपने ख्रिस्त समुदायों को, पड़ोस को और शहरों को स्वागत, सहचर्य और आतिथ्य सत्कार का निवास बनाएं। वेनिस, जो सदैव से मिलन एवं संस्कृति आदान प्रदान का स्थल रहा है, अपने में सुंदरता की निशानी होने के लिए बुलाई गई है, भ्रातृत्व की निशानी और हमारे सामान्य निवास स्थल की देखरेख करने का स्थान। संत पापा ने कहा कि यह अद्भुत है कि आपके शहर में वेनिस कला विनाइल का आप आनंद ले सकते हैं, जो एकत्रित करता, खोज करता है और कला की विविधता एवं समृद्धि का प्रचार करता है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि सुसमाचार जो हमारे जीवन को बदलता और इसे निर्देशित करता है, हमें प्रेम और खुशी के शिल्पकार बनने की मांग करता है, जिससे हम इसे हर जगह प्रसारित कर सकें। संत पापा ने वेनिस के विश्वासियों से कहा, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस शहर में रहते हैं, इसकी सुंदरता को अपने चेहरे और कार्यों में प्रकट करें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप वेनिस में पोप फ्रांसिस के उपदेश को सुन रहे थे, और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कनोशियन धर्म समाज और संत गैब्रियल धर्म बंधुओं के धर्म समाज के प्रतिनिधियों का वाटिकन में स्वागत किया और उन्हें उनके धर्म समाज की महासभा और संस्थापकों के जन्म की वर्षगांठ कनोसा की संत मगदलेना के 250 वर्ष और संत लुइस मारिया डी मोंटफोर्ट के 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबोधित किया। संत पापा ने उनके अनुभव को समकालीनता के प्रकाश में प्रस्तुत किया, जिसे अक्सर स्वार्थ और विशिष्टता द्वारा चिन्हित किया जाता है। संत पापा ने कहा कि विविधता साझा करने का एक अनमोल उपहार है। संत पापा ने दोनों धर्म समाजों के सदस्यों को धन्या पिरोनियों को उद्धृत करते हुए उन महासभा के महत्व की याद दिलाई जो पारिवारिक घटनाएं हैं, लेकिन कलीसिया की घटनाएं मुक्तिदायी घटनाएं भी हैं, सच्ची सिनोडल घटनाएं जिनमें से वह विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करता है। महासभा एक अनुग्रह का क्षण है, जिसे सबसे पहले पवित्र आत्मा की कार्रवाई के प्रति विनम्रता में अतीत को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए, वर्तमान पर ध्यान देते हुए, आपस में सुनने और समय के संकेतों को पढ़ने में जीना चाहिए, और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सत्यापन और नवीनीकरण के लिए, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए खुले और आश्वस्त दिल से भविष्य की ओर देखते हुए वे याद रखने, मूल्यांकन करने और धर्म समाज के विकास में आगे बढ़ने के लिए महासभा करते हैं। कनोसियनों द्वारा उनकी महासभा में आत्म परीक्षण के लिए चुने गए विषय, जो जलता नहीं वह आग नहीं लगाता के प्रकाश में संत पापा फ्रांसिस अपने संदेश को रेखांकित करने के लिए मजाक करते हुए कहा, मुझे दुख होता है जब मैं उन धर्म संगियों को देखता हूँ जो आग लगाने के जुनून वाले पुरुषों और महिलाओं की तुलना में अग्निशामकों की तरह दिखते हैं। कृपया अग्निशामक नहीं बने, वे हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। यह याद करते हुए कि कनोसियन 7 देशों में 10 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के सदस्यों के साथ मौजूद हैं और उन्हें सक्रिय और कनोसियन धर्म बहनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, संत पापा ने उन्हें अपने संस्थापक के साहस को देखने का आग्रह किया, जिसने ऐसी दुनिया में जो हमारी तुलना में कम कठिन नहीं थी, यीशु को जानने और प्यार किए जाने हेतु काम किया, जिसे प्यार नहीं किया जाता क्योंकि वे बहुतों से ज्ञात नहीं हैं। संत गैब्रियल धर्म समाज में 1000 से अधिक धर्म बंधु हैं, जो 34 देशों में प्रेरितिक सहायता, मानव और सामाजिक प्रचार और शिक्षा, विशेष रूप से अंधे और बहरे लोगों के बीच शिक्षा में लगे हुए हैं। संत पापा ने फिर से दोहराया कि पवित्र आत्मा सद्भावना उत्पन्न करता है क्योंकि वह इसका स्वामी है। और संत पापा ने फिर जोर देते हुए कहा, एक रूपता धार्मिक संस्थानों, धर्म प्रांतों और आम समूहों में बाधा डालती है। सद्भाव में विविधता विकास की ओर ले जाती है। सद्भाव में विविधता इस प्रकार स्वागत और एकीकरण के नबी बनने का निमंत्रण देती है। और संत पापा फ्रांसिस ने सभी ख्रिस्तियों को सुसमाचार के आनंद को अपनाने, शिष्य के रूप में प्रभु से संयुक्त रहने और जीवन की परिपूर्णता के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु प्रेरित किया। सोमवार को संत पापा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्स पर लिखा, सुसमाचार का आनंद को जब वास्तव में अपनाते हैं तो हम में शिष्यत्व की गति उत्पन्न हो जाती है। यह हमें स्वयं से वास्तविक बहिर्गमन को उकसाता है और हमें प्रभु से मिलने और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करने के मार्ग पर ले जाता है। उधर नए समुद्री मार्ग के माध्यम से सहायता पहुंचाने में मदद के लिए ब्रिटिश सैनिकों को गाजा में जमीन पर तैनात किया जा सकता है। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार कोई भी अमेरिकी सेना तट पर नहीं जाएगी। हालांकि ब्रिटेन कथित तौर पर सहायता गलियारा खुलने पर सेना भेजने पर विचार कर रहा है। लोरी और छोटे जहाजों में स्थानांतरित होने से पहले साइप्रस के लार्नाका से गाजा तक सहायता पहुंचाई जाएगी। अन्य घटनाक्रमों में हमास गाजा पट्टी में युद्ध विराम के आंदोलन के प्रस्ताव पर इजरायल की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। समूह ने घोषणा की है कि वह गाजा पट्टी में शत्रुता के स्थायी अंत के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए तैयार है जो फिलिस्तीनियों की जरूरतों और अधिकार को ध्यान में रखता है। कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका कैदियों की अदला बदली और दूसरे युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पर इसराइली हमलों में कम 34,300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इसराइल पर हमास के हमलों में लगभग 1,200 लोग मारे गए हैं। अन्यत्र दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में शनिवार को 2 हिजबुल्लाह लड़ाकों और एक नागरिक की जान चली गई। इसराइल पर हमास के हमले के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लेबनानी सशस्त्र समूह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेटों की बौछार के बाद पिछले अक्टूबर में लेबनान इसराइल सीमा पर बेचैनी बढ़ गई है। रफाह आक्रमण को रद्द करने के बदले में कम से कम 33 बंधकों की रिहाई, यह इसराइल की स्थिति है जिस पर इस्लामी आंदोलन प्रतिबिंबित हो रहा है। यह गाजा पट्टी के दक्षिण रफाह में इजरायली सैनिकों के प्रवेश से बचने का आखिरी मौका हो सकता है, जहां 10 लाख से अधिक विस्थापित फिलिस्तीनी हैं। इजरायल ने हमास को एक मानवीय समझौते का प्रस्ताव दिया है और कम से कम 33 बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव रखा है। उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों की वापसी की अनुमति देने और नेटजारिम गलियारे से सेना को हटाने के लिए तैयार होंगे जो पट्टी को 2 भागों में काटता है। इस बीच हमास ने बताया कि उसे यह नवीनतम प्रस्ताव मिला है और वह इस पर विचार कर रहा है कि क्या करना है। प्रस्ताव को मिस्र के प्रतिनिधि मंडल के साथ मध्यस्थता वार्ता के माध्यम से आगे रखा गया था, जिसे बहुत अच्छा बताया गया था। अच्छी और उद्यमशील भावना से आयोजित सभी मापदंडों के तहत प्रगति हुई है। इसके अलावा मिस्र रफाह में आक्रमण की स्थिति में सिनाई की ओर शरणार्थियों के संभावित बड़े पैमाने पर पलायन को लेकर चिंतित हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।